हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग याशी को लेकर मुंबई आ गया था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। अपनी रूटीन के मुताबिक कृषा सुबह उठी। उसने याशी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। इसके बाद उसने मलिक को कॉल किया, लेकिन मलिक का नंबर भी नहीं लग रहा था। कृषा याशी के लिए परेशान हो गई थी। ऊपर से युग ने बताया था कि पिछले कुछ दिनों से कोई याशी का पीछा कर रहा था। उन्होंने एक आदमी को पकड़ा भी था। याशी का कॉल ना मिलने पर कृषा जल्दी से अपने कमरे में गई। वो राणा मेंशन में ही रह रही थी और हमेशा की तरह उनका फोर्थ फ्लोर सिर्फ युग और कृषा के लिए ही रिजर्व था। युग थोड़ी देर पहले ही घर पर आया था। कृषा उसके पास गई और उसे उठाते हुए बोली, युग जल्दी उठो ना, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो और उधर याशी का कॉल नहीं लग रहा है। मलिक भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मुझे डर लग रहा है, हमारी याशी ठीक होगी ना? जब भी याशी का कॉल नहीं लगता था, कृषा ऐसे ही परेशान हो जाती थी। युग ने उसकी ओर देखा। वो थोड़ी देर पहले ही आकर सोया था और कृषा ने उसे जगाकर परेशान कर दिया था। कृष, हो सकता है उसका फोन चार्ज नहीं होगा, मलिक भी किसी और काम में बिजी होगा, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, युग ने उसे शांत करते हुए कहा। उसकी बातें भी कृषा को तसल्ली नहीं दे रही थी। वो उसके सामने खड़ी होकर ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं युग, मुझे डर लग रहा है, मुझे एक बार उसे देखना है। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। युग ने कृषा को अपने सीने से लगाया और उसे सहलाते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। बच्चों के मामले में तुम हमेशा ऑब्सेसिव हो जाती हो। चलो तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें कहीं लेकर जाना है। लेकिन याशी, कृषा बोलने की कोशिश कर रही थी, तभी युग ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अगर तुमने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला, तो फिर मेरी उंगली के बजाय मेरे होंठ तुम्हारे होठों पर होंगे। उसके बाद जो भी होगा, उसके लिए तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। रही बात यश की, तो मैं अश्योर करता हूँ वो बिल्कुल ठीक है, युग ने कृषा की आंखों में देखते हुए इंटेंस वॉइस में कहा। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और तैयार होने के लिए चली गई। वहीं युग ने कृषा को तो समझा दिया था, लेकिन याशी और मलिक दोनों के ही कॉल रिसीव ना करने पर वो भी थोड़ा परेशान हो गया था। उसने तुरंत मलिक को कॉल किया। मलिक ने कॉल रिसीव किया और जल्दी से कहा, सॉरी सर, पहले फ़ोन चार्ज नहीं था, फिर बाद में याशी बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। उनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि मैं कॉल रिसीव ना करूं। ठीक है, लेकिन आगे से कॉल रिसीव ना भी करो तो मैसेज छोड़ देना, तुम्हारे लिए ये नॉर्मल बात होगी। लेकिन कृष बहुत परेशान हो गई थी, युग ने सख्त आवाज़ में कहा और तुरंत कॉल कट कर दिया। इसके बाद वो उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। घर में शादी की रस्में आज से शुरू होने वाली थी। इन सबके बीच युग कृषा को लेकर कहीं जा रहा था। किसी ने भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। हाँ, मेहर ज़रूर उनकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि सुबह से ना तो ध्रुव दिखाई दे रहा था, ऊपर से वे लोग भी कहीं बाहर जा रहे थे। ना जाने ये लोग कब मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानेंगे। बस 3 दिन और वेट करना है, फिर मैं भी देखती हूँ कि ये मुझे कितना इग्नोर करते हैं, मेहर ने मन ही मन कहा और फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सबके बीच इन्वॉल्व होने की कोशिश करने लगी। वहीं युग और कृषा गाड़ी में थे। कुछ ही देर में वे याशी के अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। कृषा उस जगह से अनजान नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी कई बार वहां आ चुकी थी। अचानक युग के यहां आने पर कृषा ने हैरानी जताते हुए पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो युग? ऊपर से मुझे याशी को कॉल भी नहीं करने दिया। तुम में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है कृष, बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करती हो, तुम्हें कुछ दिखाना है, युग ने कहा और फिर गाड़ी से उतरकर कृषा के लिए दरवाज़ा खोला। युग कृषा को लेकर याशी के अपार्टमेंट के अंदर गया। जैसे ही मलिक ने उनके लिए दरवाज़ा खोला, कृषा ने अपने सामने याशी को देखा। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। याशी को खुश देखकर युग के चेहरे पर भी सुकून के भाव थे। कृषा जल्दी से दौड़कर याशी के गले लग गई और बोली, तुम यहाँ कब से हो और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, तुम्हारे डैड ने भी कुछ नहीं बताया, तुम सब बहुत बुरे हो। कृषा ने याशी से अलग होकर युग को घूरते हुए देखा तो युग ने अपने कंधे उचकाए। वो याशी के पास आया और उसे हग किया। इससे पहले कि कृषा याशी के सामने कुछ और पूछती, युग ने आंखों के इशारों से उसे शांत रहने को कहा। चलो याशी, हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो, हम लोग तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने आए हैं। मलिक अंकल की हेल्प नहीं करोगी? युग ने बड़े प्यार से कहा। यस ऑफकोर्स डैड, याशी ने जल्दी से कहा और फिर मलिक का हाथ पकड़कर किचन एरिया की तरफ चली गई। कृषा युग के पास आई और नाराजगी भरे लहजे में बोली, आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे कुछ बताओगे? इस बार ध्रुव ने भी मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम्हारी तरह उसे भी नहीं पता कि यश यहाँ है। मैं यश को लेकर श्रीलंका गया था, तुम्हारे पुराने घर में। लगता है कोई यश के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उसे अपनी नज़रों से दूर रखना मुझे सही नहीं लगा, तो मैं उसे यहाँ ले आया। तुम जानती हो, इस अपार्टमेंट से सेफ जगह तो हमारा घर भी नहीं है, युग ने धीमी आवाज में उसे सब समझाते हुए कहा।
कृषा ने आगे कोई बहस नहीं की। वो जानती थी कि युग ने जो फैसला लिया है वो गलत हो ही नहीं सकता। क्या हमें सबको बता देना चाहिए? याशी मुंबई आ गई है तो उसका हक बनता है कि वो अपने भाई की शादी अटेंड करे। ज्यादा से ज्यादा बाकी लोगों को उसकी एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम उसे प्रोटेक्ट कर लोगी? कृषा ने युग की आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में कहा। फिलहाल मैंने इस बारे में नहीं सोचा। जब तुम्हें इतना यकीन है कि हम उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे तो फिर तुम्हारी आंखों में ये बेचैनी क्यों दिखाई देती है कृष? युग ने कृषा को गले लगाते हुए कहा। वो जानता था कि कृषा इस वक्त बहुत बेचैन और परेशान थी। कृषा ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे बुरा लगता है जब याशी को इस तरह सबसे छुपा कर रखना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि वो वही जिंदगी जी रही है जो एक वक्त मैं जी रही थी। इस तरह खुद को छुपाते हुए वो बहुत सी चीजें मिस कर रही है। कभी न कभी तो लोगों को उसके बारे में पता चलेगा ही, जैसे मेरा पता चला था। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन याशी को छुपा नहीं पाएंगे युग। मेरी तरह उसे भी पता चल ही जाएगा कि वो एक नॉर्मल फैमिली से नहीं बल्कि माफिया फैमिली से बिलोंग करती है। कृषा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया। कृषा को सिसकते हुए महसूस करके युग उससे अलग हुआ। उसने कृषा के आंसू साफ किए और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। युग कृषा की आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हारी इन बातों को तुम्हारा प्यारा भाई अर्जुन सुन ले तो वो ऑफेंड हो जाएगा। सच में उसने बहुत अच्छा काम किया था। किसी को नहीं पता था कि माफिया प्रिंसेस तुम हो, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। तुम रोना बंद करोगे? मुझे सख्त नफरत है तुम्हारी आंखों में आंसू देखने से। कृषा ने सुबकते हुए हाँ में सिर हिलाया। युग ने उसे रोने से मना किया था, फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। युग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर सर्दावाज में कहा, अच्छा तो तुम प्यार से समझाने पर नहीं मानने वाली हो। सोच लो, डेविल को रोकने के कई तरीके आते हैं, पर तुम झेल नहीं पाओगी। चलो तुम्हें रोने की एक अच्छी सी वजह दे देता हूँ।
युग को परेशान करते देख कृषा ने उसके चेस्ट पर मारते हुए कहा, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को चुप करवाता है। तुम सच में डेविल ही हो। तुम्हारी याशी ने तुम्हारा ये रूप देखा तो उसे यकीन हो जाएगा कि उसके डैड इतने भी इनोसेंट नहीं है जितना वो उनके सामने बनने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, याश काफी इंटेलिजेंट है। वो इस बात को अच्छे से समझती है कि उसके डैड का सॉफ्ट साइड सिर्फ उसी के लिए है, युग ने भौहें उठाकर कहा। युग और कृषा इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। युग ने कृषा को उसकी कमर से थाम रखा था और बात करते हुए उनकी नाक आपस में मिल रही थी। जब मलिक याशी के साथ वापस वहां आया तो उन्हें इतने करीब देखकर याशी थोड़ा सा खांसने लगी। कृषा जल्दी से युग से अलग हो गई। हमेशा बच्चों के सामने एम्बैरस कर देते हो, कृषा ने युग की तरफ घूरते हुए धीरे से कहा। रोमांस टाइम ओवर एंड ब्रेकफास्ट टाइम इज ऑन, याशी ने आंख मारते हुए कहा और उन्हें डाइनिंग टेबल पर आने का इशारा किया। डाइनिंग टेबल पर जाते ही युग ने कृषा से कहा, तुम बेवजह एम्बैरस होती हो। तुम भले ही चाइल्डिश हो लेकिन तुम्हारे बच्चे काफी समझदार हैं, ऑफकोर्स मुझ पर जो गए हैं। युग ने कृषा को फिर से छेड़ा और डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। कृषा उसके पीछे पांव पटकते हुए आई। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव तारा को लेकर उसके नए घर पहुंच चुका था। मिली ने अपने भाई बहनों को पहले ही तैयार कर दिया था। जैसे ही तारा वहां पहुंची वो हैरान रह गई। ध्रुव ने उनके लिए अच्छा खासा अपार्टमेंट खरीदा था। इतने कम टाइम में ये इम्पॉसिबल था। तारा ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा। वो उसकी इस हैरानी का कारण समझ सकता था। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, ज्यादा मत सोचो, राणा इंडस्ट्रीज का एक काम अपार्टमेंट तैयार करना भी है, उसी में से एक को बुक किया था। लेकिन ये काफी महंगा होगा, तारा ने धीरे से कहा। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इतने पैसे कमा रखे हैं, उनका क्या करेंगे, कम से कम कहीं तो इस्तेमाल हो रहे हैं। चलो जल्दी आओ, ध्रुव ने बेपरवाही से कहा। तारा पहले से ही जानती थी कि राणा फैमिली काफी अमीर है। ध्रुव या बाकी राणा फैमिली के मेंबर्स ने कभी इस चीज का शो ऑफ नहीं किया था। ध्रुव ने सिक्योरिटी पासवर्ड अपने हिसाब से सेट किए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मिली और उसके भाई बहन खड़े थे। ध्रुव को शक ना हो इसलिए तारा जल्दी से दौड़कर उनके पास गई और मिली के गले लग गई। तारा दीदी, आप कहाँ रह गई थीं? मुझे लगा उस गंदे आदमी ने आपको भी कुछ कर दिया होगा। सॉरी दीदी, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई, मिली रोते हुए बोली। तारा मिली के गले लगी हुई थी। उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, ओवर एक्टिंग थोड़ी कम करना वरना ये पकड़ लेगा। तारा मिली से अलग हुई तो उसके छोटे छोटे तीन भाई बहन तारा से आकर चिपक गए। दीदी, हमने आपको बहुत मिस किया, उनमें से एक बोला। मैं भी, तुम लोग अब कैसे हो? तारा ने उनके बालों को सहलाते हुए कहा। वो तो उनका नाम तक नहीं जानती थी। हम ठीक हैं, इस नए और बड़ी से घर में तो और भी ज्यादा ठीक हैं, दूसरा वाला बोला। तारा ने उसे चुप करने के लिए आंखें दिखाई, फिर ध्रुव की तरफ पलटकर बोली, सुनो अब तुम जा सकते हो, मुझे इनके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। और हाँ, मैं कल वापस आ जाऊंगी। कल नहीं, आज शाम को ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वैसे तो मैंने यहाँ सब कुछ अरेंज करवा दिया है, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना, ध्रुव ने जवाब दिया। उन सबको बाय बोलने के बाद ध्रुव वहां से चला गया। उसके जाते ही सबने राहत की सांस ली। तारा ने गहरी सांस ली और मिली से कहा, मेरे पास 5 दिन का टाइम है,
3 दिन में ध्रुव की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम लोगों के लिए सेटल होने की जगह ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से निकल जाऊंगी। गलती से भी ध्रुव राणा के सामने आने की कोशिश मत करना और कभी मत बताना कि मैं कौन हूँ। मिली ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसकी एक बहन बोली, क्या यार, ये दीदी सच में हमारी बहन नहीं है? मुझे लगा था कि अब हम अच्छे और बड़े घर में रहेंगे, फिर से उस बस्ती में जाकर रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, अच्छे घर का ही इंतजाम करूंगी। इतना महंगा और बड़ा तो नहीं ले सकती, लेकिन बस्ती में भी नहीं छोड़ूंगी, तारा ने प्यार से जवाब दिया। आप उसकी बातों को ध्यान मत दीजिए तारा मैडम, वो कुछ ज्यादा ही बोलता है। आप हमारी सिक्योरिटी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, वही काफी है, मिली ने तारा से कहा। तारा ने ध्रुव को यही कहा था कि वो पूरा टाइम अपने भाई बहनों के साथ स्पेंड करेगी, लेकिन उनके साथ एक घंटा बात करके उन्हें सब कुछ समझाने के बाद तारा वहां से कहीं जाने के लिए निकल गई। तारा ने अपना चेहरा मास्क से कवर कर रखा था ताकि उसे कोई देख ना ले। वो हड़बड़ाहट में कहीं जा रही थी कि तभी ट्रैफिक पार करते हुए दक्ष की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी।